हेलो दोस्तों और सभी प्यारे बच्चों का इस नए डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस डीप डाइव का थीम है चैप्टर 8, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी मैनी इन द वन।
हेलो बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुनने में थोड़ा बड़ा वर्ड लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है। इसका मतलब है कि अलग अलग होकर भी अंदर से बिल्कुल एक होना, और आज इस डीप डाइव में हम इसी जादू को ठीक से समझेंगे।
तो चलो बच्चों, इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करो और एक इमेजिनरी ट्रेन राइड के बारे में सोचो। इमेजिन करो हम सब एक बहुत लंबी और मज़ेदार ट्रेन जर्नी पर हैं।
अरे वाह, ट्रेन का सफर, खिड़की के बाहर ठंडी हवा चल रही है और अलग अलग लैंडस्केप्स चेंज हो रहे हैं। कभी खिड़की से बड़े बड़े बर्फ वाले पहाड़ दिखते हैं, तो अगले ही दिन हरे भरे खेत नजर आते हैं।
बिल्कुल, और जब अचानक से एक नया स्टेशन आता है तो वहाँ प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए लोगों के ड्रेसेस बिल्कुल अलग दिखते हैं। किसी ने लंबी सी पगड़ी पहनी है तो किसी ने रंग बिरंगी चुन्नी। और सिर्फ ड्रेसेस नहीं बदलते दोस्तों।
हाँ, वहाँ प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला फूड भी बिल्कुल बदल जाता है। अगर हमारी ट्रेन साउथ में रुकी है तो वहाँ इडली और कोकोनट वाली चटनी मिल रही है, और अगर ट्रेन नॉर्थ में रुकी है तो गर्मा गर्म छोले भटूरे। हर जगह का अपना एक स्पेशल फूड होता है।
एकदम सही कहा। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या होती है इस इमेजिनरी ट्रेन राइड में? जब लोग उस प्लेटफॉर्म पर आपस में बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेजेस भी चेंज हो जाती हैं। नई लैंग्वेजेस सुनाई देती हैं और बड़े बड़े साइन बोर्ड्स पर लिखे हुए स्क्रिप्ट्स भी अलग होते हैं। हर लेटर का डिज़ाइन नया होता है।
ये सब देखकर कितना मजा आता है बच्चों। यही तो हमारी इंडिया की रिच डाइवर्सिटी है। हर कुछ किलोमीटर पर सब कुछ थोड़ा नया और थोड़ा अलग हो जाता है। हमारे देश के एक बहुत फेमस पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने इस बात पर एक प्यारी लाइन कही थी कि इस मैनी के खेल में वन का एहसास नहीं खोना है।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों को अगर सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो?
इसका सिंपल मतलब ये है कि चाहे हमारे पास मैनी यानी बहुत सारी अलग अलग चीजें हों, फिर भी उन सब के अंदर एक वन यानी यूनिटी छुपी हुई है। हम बाहर से कितने भी अलग दिखें, अंदर से हम एक हैं।
तो कितनी प्यारी बात है। तो दोस्तों, इस डीप डाइव का मिशन यही है, हमें मिलकर ये समझना है कि इतने अलग होने के बावजूद, हमारा फूड, हमारी लैंग्वेजेस और हमारे ड्रेसेस अलग होने के बावजूद भी हम सब अंदर से एक कैसे हैं।
तो चलिए फिर इस डाइवर्सिटी के राज को खोलते हैं। सबसे पहले नंबर्स का गेम समझते हैं बच्चों, कि आखिर इतनी सारी अलग अलग चीजें एक देश में आई कहां से।
दोस्तों सोचो, अगर एक कमरे में दुनिया के 100 लोग खड़े हैं तो उनमें से 18 लोग सिर्फ इंडिया से होंगे। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है। ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 18% होता है। तो सोचो, जब इतने सारे लोग एक ही देश में रहते हैं तो वहाँ कितनी अलग अलग आदतें होंगी।
सही बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी होना एकदम नॉर्मल बात है। और इस डाइवर्सिटी को ध्यान से काउंट करने के लिए ना, लेट 20th सेंचुरी में एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था।
अच्छा, एक बड़ा प्रोजेक्ट। दोस्तों ये बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या नाम था इस प्रोजेक्ट का?
इसका नाम रखा गया पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। उन्होंने पूरे इंडिया के गांव गांव और शहर शहर में जाके लोगों और उनकी कम्युनिटीज की लिस्ट बनाई, और जब काउंटिंग पूरी हुई तो पता चला कि इंडिया में 4,635 कम्युनिटीज हैं।
बाप रे, 4,635 कम्युनिटीज। ये नंबर तो सच में बहुत बड़ा है दोस्तों। और इनकी भाषाओं के बारे में क्या पता चला उस प्रोजेक्ट में?
पता चला कि इंडिया में लोग 325 लैंग्वेजेस बोलते हैं, और इन सभी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए 25 अलग अलग स्क्रिप्ट्स का यूज होता है। स्क्रिप्ट्स मतलब किसी भाषा को लिखने का तरीका, उसके अक्षरों का डिजाइन।
325 लैंग्वेजेस और 25 स्क्रिप्ट्स, ये तो सच में बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी है, यानी हैरान करने वाली अनेकता। पर दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सर्वे ने ये भी देखा कि इंडिया में बहुत सारे लोग एक्चुअली माइग्रेंट्स हैं।
बच्चों, माइग्रेंट्स का मतलब समझना जरूरी है। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर नए लोगों के साथ किसी नई जगह पर जाकर रहते हैं। अब सोचो, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा?
मैं बताती हूँ, इसका एक बड़ा अच्छा कॉज एंड इफेक्ट बनता है। कॉज ये है कि लोग माइग्रेट करते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा? वो अपने साथ अपना स्पेशल फूड और अपने फेस्टिवल्स नई जगह लेकर आएंगे। इस सब के मिलने से हमारी डाइवर्सिटी और भी सुंदर हो जाती है।
बिल्कुल सही। और इस बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी को देखकर एक चश्मे वाले ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने सोचा कि भाई जिस देश में इतनी अनेकता है वहां की हिस्ट्री आखिर कैसे लिखी जाएगी। उन्हें लगा कि इतने अलग अलग लोगों की एक कहानी कैसे बन सकती है।
तो इसका आंसर क्या मिला उनको? हिस्ट्री तो हमारी एक ही है ना।
हाँ, क्योंकि इस सारी डाइवर्सिटी के बिल्कुल अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिटी छुपी हुई है, इसलिए हमारी एक हिस्ट्री है। तो बच्चों, इस मजेदार फैक्ट को ध्यान से सुनो और याद रखो, रिमेम्बर दिस, इंडिया में 325 लैंग्वेजेस और 25 स्क्रिप्ट्स हैं।
मैं भी एक बार रिपीट करती हूँ दोस्तों, रिमेम्बर दिस, इंडिया में 325 लैंग्वेजेस और 25 स्क्रिप्ट्स हैं।
अब इस यूनिटी और डाइवर्सिटी के जादू को थोड़ा और करीब से समझने के लिए हम अपने फूड का एग्जाम्पल लेते हैं। खाने की बातें सुनना तो सबको बड़ा अच्छा लगता है।
ओहो, फूड का नाम सुनते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे। दोस्तों सोचो, हम पूरे इंडिया में रोज क्या खाते हैं। चाहे हम नॉर्थ में हो या साउथ में, हमारे खाने में कुछ कॉमन स्टेपल ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स यानी अनाज, जैसे राइस, व्हीट, मिलेट और बहुत सारी पल्सेस।
और इस खाने में पड़ने वाले मसाले, हमारे स्पाइसेस भी हर जगह बहुत कॉमन है। बच्चों, उस पीली हल्दी के बारे में सोचो जिसे टर्मरिक कहते हैं, या फिर चटकता हुआ क्यूमिन यानी जीरा, मीठी मिठाइयों में पड़ने वाली कार्डमम यानी इलायची, और कड़क चाय में डालने वाली जिंजर। ये सभी स्पाइसेस हर किचन की जान है।
तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल कॉज इफेक्ट लॉजिक लगता है। कॉज ये है कि हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जैसे ग्रेन्स और स्पाइसेस हर जगह बिल्कुल सेम मिलते हैं, और ये सेम होना ही हमारी यूनिटी है। पर इसका इफेक्ट क्या होता है?
इसका इफेक्ट ये होता है कि उन्हीं सेम इंग्रेडिएंट्स को पकाने का और मिक्स करने का तरीका हर घर में बिल्कुल अलग होता है। कहीं वही राइस और दाल मिलाकर खिचड़ी बनती है, तो कहीं उसी राइस और दाल से डोसा और सांबर बनता है। इसलिए हमें इस देश में एंडलेस वैरायटी की डिशेज मिलती हैं, और ये वैरायटी ही हमारी डाइवर्सिटी है।
क्या मस्त बात है, सेम इंग्रेडिएंट्स पर न्यू स्टाइल्स। और दोस्तों, ये फॉर्मूला सिर्फ खाने पर नहीं लगता। अब हमारे कलरफुल ड्रेसेस की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हर रीजन के अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, पर ध्यान से देखो तो वहां भी हमें यूनिटी दिखती है।
चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। साड़ी और धोती के बारे में सोचिए बच्चों। चाहे साड़ी हो या धोती, दोनों ही एक्चुअली में सिर्फ एक प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ होते हैं। ये लंबा सा प्लेन कपड़ा होना ही यूनिटी है।
लेकिन उस सेम लंबे कपड़े को पहनने और ड्रेप करने के स्टाइल्स हर स्टेट में बिल्कुल अलग होते हैं। हर कम्युनिटी में उसे पहनने का एक नया तरीका मिलता है, और ये पहनने का अलग अलग स्टाइल ही हमारी डाइवर्सिटी है।
एकदम ठीक। और जब ड्रेसेस की बात चली रही है बच्चों, तो मैं हिस्ट्री की एक बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी आज से बहुत साल पहले 17th सेंचुरी की है। उस पुराने जमाने में हमारा देश इंडिया पूरी दुनिया का सबसे फाइनेस्ट कॉटन बनाता था।
सबसे बेहतरीन और मुलायम कॉटन।
सबसे बेहतरीन कॉटन। दोस्तों सोचो, एक ऐसा कपड़ा जो रुई जैसा मुलायम हो, फिर क्या हुआ उस कपड़े का?
उस जमाने में इंडिया में एक स्पेशल तरह का प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ बनाया जाता था, जिसे चिंस कहते थे। इस चिंस क्लॉथ पर बहुत ही सुंदर डिजाइन प्रिंट किए जाते थे। ये चिंस क्लॉथ शिप्स में भर भर कर यूरोप भेजा जाता था।
अच्छा, फिर वहां क्या इफेक्ट हुआ इसका?
दोस्तों ध्यान से सुनना, ये कॉज और इफेक्ट।
इफेक्ट ये हुआ कि 17th सेंचुरी यूरोप में ये इंडियन चिंस इतना ज्यादा पसंद आया कि वो वहां सुपर पॉपुलर हो गया। लोग उसके प्रिंट्स के दीवाने हो गए, और इस पॉपुलैरिटी का इफेक्ट ये हुआ कि वहां के लोगों में अपने खुद के लोकल ड्रेसेस खरीदना और पहनना ही बंद कर दिया।
बाप रे, तो वहां के कपड़ा बनाने वालों का तो बहुत नुकसान होने लगा होगा, उन्होंने सब कुछ खरीदना बंद कर दिया।
हाँ बिल्कुल, यूरोप की जो लोकल फैक्ट्रीज थी उनके कपड़े बिकना बंद हो गए। तो अपने देश के लोकल ड्रेसेस को बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस की गवर्नमेंट्स डर गईं। उन्होंने डर कर एक लॉ बनाया और इंडिया से आने वाले इस खूबसूरत चिंस कपड़े पर पूरी तरह से बैन लगा दिया।
दोस्तों सोचो, हमारे देश का कपड़ा इतना सुंदर था कि बाहर के देशों को उस पर बैन लगाना पड़ा। ये स्टोरी तो सच में बहुत अमेजिंग है। तो बच्चों, इस शानदार फैक्ट को याद रखना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, रिमेम्बर दिस, 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस ने इंडिया के ब्यूटिफुल चिंस क्लॉथ पर बैन लगाया था।
एक बार फिर से हो जाए दोस्तों, रिमेंबर दिस, 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस ने इंडिया के ब्यूटिफुल चिंस क्लॉथ पर बैन लगाया था।
अब खाने और कपड़ों के रंगीन सफर के बाद हम उस चीज की बात करते हैं जिसका साल भर इंतजार रहता है, फेस्टिवल्स।
ये फेस्टिवल्स का नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं कि लगता है पूरा साल ही एक बड़ी सी पार्टी चल रही है। पर क्या वहां भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जादू है?
बिल्कुल चल रहा होता है बच्चों। इंडिया में एक ही टाइम पर एक ही खुशी को मनाने के लिए अलग अलग नामों से त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार मनाने का रीजन एक ही होता है, जो यूनिटी है, पर उनका नाम और स्टाइल अलग होता है, जो हमारी डाइवर्सिटी है। चलो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जनवरी 14 के आसपास के टाइम को याद करो।
जनवरी का महीना बहुत ठंड होती है, पर किसानों के खेत में बहुत रौनक होती है।
सही सोचा। जनवरी 14 के आसपास इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत होती है। बच्चों, हार्वेस्ट सीजन का मतलब होता है जब खेत में नई फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है। फिर किसान उस फसल को काटने की खुशी में एक बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं।
तो फसल काटने की खुशी एक ही है, ये हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग यूनिटी। पर दोस्तों, क्या पूरे देश में इसको एक ही नाम से बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं। चलो हम अलग अलग नामों को काउंट करते हैं बच्चों। इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को हमारे देश में मकर संक्रांति के नाम से बुलाया जाता है।
पर अगर हम सफर करते हुए साउथ इंडिया में चले जाएं, तो लोग इसी खुशी को पोंगल कहते हैं।
और अगर हम घूमते हुए गुजरात पहुंच जाएं, जहां पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है, तो वहां इसे उत्तरायण कहते हैं।
उधर असम की तरफ चले जाएं, तो वहां लोग सब मिलकर गाना गाते हैं और इसे माघ बिहू बोलते हैं।
और जब हम वापस नॉर्थ इंडिया आते हैं, तो ठंड की रात में आग जलाते हैं, ढोल बजाते हैं और इसे लोहरी या माघी मनाते हैं। दोस्तों, देखा आपने, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, माघ बिहू और लोहरी, मैनी नेम्स वन मीनिंग, रीजन सिर्फ एक है, फसल की खुशी, बस नाम अलग हैं।
यही तो सच्ची यूनिटी इन डाइवर्सिटी है बच्चों। चलिए अब इन नामों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं। रिमेंबर दिस, जनवरी 14 के आसपास आने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बहुत नाम हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल और लोहरी।
मेरे साथ एक बार रिपीट करो दोस्तों, रिमेंबर दिस, जनवरी 14 के आसपास आने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बहुत नाम हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल और लोहरी।
दोस्तों, खाना हो गया, कपड़े हो गए और त्योहार भी मना लिए। अब टाइम आ गया है आराम से बैठकर स्टोरी सुनने का। बच्चों को स्टोरी सुनना कितना पसंद होता है ना?
मुझे तो बहुत पसंद है। और दोस्तों, हमारी इंडियन स्टोरीज की ताकत इतनी बड़ी है कि वो सिर्फ एक गांव या एक शहर तक नहीं रुकी, उन्होंने पूरी दुनिया का ट्रैवल किया है।
सही बात है बच्चों। पंचतंत्र की स्टोरीज के बारे में सोचो, हम सबने कभी ना कभी ये कहानियां जरूर सुनी हैं जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, एक चतुर लोमड़ी या समझदार कछुआ। इन सब के जरिए हमें इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल सीखने को मिलती हैं।
पर इन पंचतंत्र की स्टोरीज से जुड़ा एक बहुत ही शानदार फैक्ट है बच्चों। क्या आपको पता है कि इस किताब का जो सबसे ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो सबसे पहले शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था, वो कितना पुराना है?
वो एटलीस्ट 2200 साल पुराना है बच्चों। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात एक और है। ये स्टोरीज इतनी मजेदार थीं कि ये सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज में नहीं रुकी, इन कहानियों ने दुनिया भर में ट्रैवल करना शुरू कर दी।
कहां कहां ट्रैवल किया इन स्टोरीज ने?
ये सबसे पहले इंडिया से निकलकर साउथ ईस्ट एशिया गईं, फिर वहां से आगे बढ़कर दूर अरब वर्ल्ड तक पहुंची और फिर चलते चलते पूरे यूरोप तक ट्रैवल कर गई।
बाप रे, एक छोटी सी स्टोरी की किताब ने पूरी दुनिया की यात्रा कर ली। हर नए देश में लोगों ने उसको अपना बना लिया।
बिल्कुल। और उसका नतीजा ये है कि आज के टाइम में पंचतंत्र के लगभग 200 एडाप्टेशंस दुनिया में मौजूद हैं। एडाप्टेशंस मतलब उसी कहानी को थोड़ा बदल कर लिखना। और ये किताब आज दुनिया की 50 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ी जाती है। वन कलेक्शन बिकेम मैनी।
ये तो कमाल की बात है। पर दोस्तों, पंचतंत्र के अलावा इंडिया के पास हमारे दो बड़े एपिक्स भी हैं, रामायणा और महाभारता। ये दोनों एपिक्स 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
एकदम सच। और ध्यान दीजिए कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यहाँ कैसे दिखती है। इन एपिक्स को पूरे देश में अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट तो किया ही गया है, पर सबसे स्पेशल बात यह है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज के पास इनकी बिल्कुल अपनी लोकल स्टोरीज हैं।
ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे इंडिया में भिल्स, गोंज और मुंडाज हैं, और बर्फ से ढके हिमालयन ट्राइब्स भी हैं। इन सब के पास अपने फोक वर्जन्स हैं जो ओरली सुनाई जाते हैं।
हाँ, और इस पर एक बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था K.S. सिंह। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो अलग अलग लोगों और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में शायद ही ऐसी कोई जगह बची होगी जहां की लोकल स्टोरीज में लोग ये क्लेम ना करते हों कि एपिक्स के हीरोज उनके गांव आए थे।
मतलब इंडिया के हर दूसरे गांव में वहां के लोग गर्व से कहते हैं कि देखो बच्चों, यहां पर खड़े होकर पांडवास ठहरे थे, या ये वही जगह है जहां राम जी आए थे।
सही पकड़ा, हर गांव में उनके विजिट करने की कहानियां मिलती हैं। तो बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक आम स्टोरी ने पूरे देश को एक डेंस वेब यानी एक मजबूत जाल में कनेक्ट करके रखा है। ये है सच्चा एग्जाम्पल मैनी इन द वन का।
दोस्तों, इन प्यारी स्टोरीज की ताकत को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी महसूस किया था। उन्होंने देखा कि गांवों में रहने वाले ऐसे इलिटरेट विलेजर्स जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें भी इन एपिक्स के वर्सेस और मॉरल्स मुंह जबानी याद थे।
यही तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम सब एक दूसरे से इन कॉमन स्टोरीज की वजह से दिल से जुड़े हुए हैं। चलिए अब इस ऑसम फैक्ट को जोर से याद करें। रिमेंबर दिस, पंचतंत्र की स्टोरीज एटलीस्ट 2200 साल पुरानी है और ये 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में मिलती हैं।
एकदम मस्त दोस्तों, इसको रिपीट करते हैं। रिमेंबर दिस, पंचतंत्र की स्टोरीज एटलीस्ट 2200 ईयर्स पुरानी है और ये 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में मिलती हैं।
बहुत शानदार। तो बच्चों, हम इस खूबसूरत से डीप डाइव के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आइए सारी नई इन्फॉर्मेशन को मिलकर समराइज करते हैं।
हाँ दोस्तों, जरा सोचो हमने अपनी उस इमेजिनरी ट्रेन राइड में आज क्या क्या देखा। हमने देखा कि इंडिया में बहुत अलग अलग लैंडस्केप्स हैं। हर स्टेशन पर लोगों का फूड और उनके ड्रेसेस मैजिकली चेंज होते हैं। हमने नई लैंग्वेजेस और अनोखे फेस्टिवल्स के बारे में जाना, और हमने स्टोरीज का दुनिया में ट्रैवल करना भी समझा।
पर इन सारी बातों के बीच एक सबसे बड़ा मैसेज क्लियर है, इंडिया की ये बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी हमें कभी आपस में डिवाइड नहीं करती।
तो फिर ये डाइवर्सिटी आखिर क्या करती है?
वो हर दिन सेलिब्रेट करती है बच्चों। हम एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए तो हम इतने स्पेशल हैं। हमारे अंदर छुपा हुआ वन इन तमाम मैनी चीजों को एंजॉय करता है।
क्या मस्त समरी है दोस्तों। अब वक्त है एक मजेदार डिटेक्टिव टास्क का। हम सबको आज अपने आसपास के ग्रैंड पेरेंट्स या किसी एल्डर के पास बैठना है और उनसे एक स्पेशल सवाल पूछना है।
कैसा सवाल पूछना है दोस्तों?
उनसे पूछिए कि क्या उनके पास किसी पुरानी एपिक या फेस्टिवल की कोई ऐसी स्टोरी है जो सिर्फ आपके ही गांव या सिटी में सुनाई जाती है। पूछिए कि क्या कोई ऐसा एंशिएंट मॉन्यूमेंट या पत्थर है आपके घर के पास जिसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी हो जो बाहर वालों को नहीं पता।
यह बहुत ही बढ़िया टास्क है बच्चों। खुद के इलाके की हिस्ट्री और कल्चर को एक्सप्लोर करने का टाइम है, और सोचना जरूर कि अगर हर शहर की कहानी थोड़ी अलग है तो हम सब मिलकर उस बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे हैं।
बिल्कुल दोस्तों, खुद खोजो, नए सवाल पूछो और हर दिन नया सीखो। तो इस प्यारे थॉट के साथ हम आज का ये इनसाइटफुल डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। मुझे तो बच्चों इस ट्रेन राइड में बहुत मजा आया।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आज इस सफर के बाद हम सबको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का लॉजिक एक कहानी की तरह अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं सभी दोस्तों से बहुत जल्द एक बिल्कुल फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आसपास के मैजिक को एक्सप्लोर करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।
बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना और नई कहानियां ढूंढते रहना।